अर्पण रेडियो पर प्रस्तुत है लेखक जयशंकर की लिखी कहानी निराशा। वाचक स्वर है सीमा सिंह का।
वो लाइब्रेरी की टेरेस पर खड़ी थी। निरंतर बारिश के बाद की शाम में एग्रीकल्चर कॉलेज की तरफ जाती सड़क पर एक मरियल सा भूरा घोड़ा खड़ा था। बहुत दूर मस्जिद की मीनारों के पीछे चिमनियों से धुआं उठ रहा था। घर लौटते परिंदों, पेड़ों पर उतरते अंधेरे और सूनी सड़क पर खड़े मरियल घोड़े के बीच वो लाइब्रेरी की तरफ बढ़ता नजर आया। वो बस से आया होगा, बारिश में वो स्कूटर चलाने से बचता था। उसे गेट के पास खड़ा देखकर नैना नीचे उतरने लगी। किसी ने नल खुला छोड़ दिया था, उसने बंद किया। लाइब्रेरी की घड़ी में 7 बज रहे थे। वो लेटर बॉक्स के करीब खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा था। क्लास ही नहीं थी, छत की मरम्मत हो रही है, नैना ने कहा। तब तो तुम्हें बहुत रुकना पड़ा। शाम अच्छी लग रही थी, कुछ देर तक मेरी 2 छात्राएं भी साथ थीं। उन्होंने पूछा होगा कि तुम किसकी प्रतीक्षा कर रही हो। नहीं पूछा, और पूछती तो बता देती कि मेरे एक मित्र आ रहे हैं। तुम यह नहीं कहती, उसने हंसते हुए कहा। मैं यही कहती, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तुम नाराज हो रही हो। नहीं, पर जब तुम मुझ पर संदेह करते हो। अरे मैं मजाक कर रहा था, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम यही कहती। मैंने 3 वर्षों में तुम्हें कुछ तो जाना ही है। हवा में हल्की सी गर्मी उतर आई और लड़की को अपना शॉल बोझ सा महसूस हुआ। करीब की गुमटी के ट्रांजिस्टर से सुनंदा पटनायक की आवाज़ आ रही थी। वे दोनों उसी सड़क पर बढ़ने लगे जिसकी शुरुआत पर कुछ देर पहले भूरा घोड़ा खड़ा था और जिसने नैना को फेलिनी की फिल्म के उस दृश्य की याद दिलाई थी जिसमें नायिका रात के वक्त फुटपाथ पर बैठी है और सामने से घोड़ा गुजरता है। उस शाम वे पैदल ही अपने अपने घर पहुंचे। आदमी की पत्नी बीमार थी और उसे दवाइयां खरीदनी थी। लड़की को नानी के लिए रोटियां बनानी थी और उसे पहले ही देर हो गई थी। एक जगह से वे अलग अलग दिशाओं में चले गए। शिव मंदिर में आरती हो रही थी। कभी शिव मंदिर की आरती में वो भी माँ के साथ शामिल होती रही थी। रात के खाने के बाद माँ बेटी टहलने के लिए निकलती और कुछ देर मंदिर में रुक जाती। ये 5 बरस पहले की बात है, तब नैना 24 की रही होगी। एक दिन पुजारी की अपनी देह पर पड़ती निरंतर और निर्लज निगाहों को महसूस करने के बाद नैना ने मंदिर न जाने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। इसीलिए तो चिंता करती हूँ, लड़की जवान हुई कि सभी की निगाहें बदल जाती हैं। मैं तो तुम्हारे साथ के लिए जाती हूँ माँ, तुम जिस मंदिर में कहोगी हम वहीं चलेंगे। पर क्या वहाँ उस पुजारी की तरह कोई नहीं होगा? बुरी नज़र हर जगह होगी नैना, हमें उसे सहना ही होगा। धीरे धीरे हर लड़की उन नज़रों को सहना सीख लेती है। डरती हूँ कि मैं ना रहूँ और तुमने शादी भी नहीं की तो कौन तुम्हें संभालेगा? तुम्हें क्या होगा माँ, कभी कभी तुम पागलों की सी बातें करने लगती हो। शिव मंदिर की घंटियों की आवाज़ों के बीच नैना ने माँ की मरने से पहले की डबरबाती डूबती नज़रों को देखा। उन नज़रों में कहीं ये भी था कि नैना तुम अब भी अविवाहित हो और कब तक ऐसे रहोगी, कब तक इन सूने नंगे और रेतीले दिनों को सहोगी। उसने अपने दरवाजे पर दस्तकें दी और उसकी नानी ने दरवाज़ा खोला। बहुत देर लगा दी, नाहिद अभी अभी गई, उसने मेरे लिए रोटियां भी सेक दी, ये कार्ड दिया है। तुम खाना खा लो नानी, मैं कुछ देर आराम करूँगी। वो एक तरह के खालीपन, एक तरह की शून्यता के बोझ के साथ बिस्तर पर लेट गई। कार्ड में फिल्म सोसाइटी का प्रोग्राम था। प्लाजा में बर्गमैन की 3 फिल्मों का हर रविवार को प्रदर्शन होना था। नैना खुश थी कि बर्गमैन की फिल्म में इनग्रीड बर्गमैन और लिव उलमान को साथ साथ देखना होगा। उसने नाश्ता तैयार किया, नानी के लिए पानी गर्म किया, रसोई की स्लेट पर नौकरानी के लिए सूचना लिखी और तैयार होकर बस स्टॉप की तरफ बढ़ गई। बारिश के बाद की चमकीली धूप में शहर का रविवार खड़ा था। बस स्टॉप पर केरल की 10-12 लड़कियां थीं जो संडे मास के लिए गिरजे जा रही होंगी। उनमें से एक लड़की का मासूम और ममतामयी चेहरा नैना को छू गया। कितना करुण है वो चेहरा, कितना कुछ कहती हैं वे आँखें। और तब नैना ने उसके बचपन में मरे अपने पिता की कातर आँखों को भी याद किया। लता नहीं आई, नैना ने पूछा। उसकी तबीयत वैसी ही है, उसने कहा। मिसेज राणा डे को बता दिया? मेरा उस बुढ़िया पर विश्वास नहीं है। कभी तुमने किसी पर विश्वास भी किया है? वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। फिल्म शुरू होने की बेल बजने लगी। पुराना थिएटर एकदम ताज़ी धूप में किसी पुराने गिर जैसा नज़र आ रहा था। ऑटम सोनाटा देखने के बाद वे दोनों करीब के एक रेस्तरां में गए। रेस्तरां के काउंटर पर जो आदमी पिछले बरसों में बैठता रहता था, उसने कुछ दिनों पहले खुदकुशी की थी। अब वहाँ उसकी पत्नी खड़ी थी। लकड़ी की दीवार पर परमहंस की तस्वीर टंगी थी और करीबी काली का मुखौटा। आखिरी दिनों में वो बहुत चुपचाप रहता था। ये कैंटीन पहले की तरह चल भी नहीं रही थी, उसने कहा। मठ में हमारी मुलाकात होती रहती थी। उनसे मिलकर कोई नहीं सोच सकता था कि एक दिन वे रेल की पटरी पर आत्महत्या। नैना ने उसकी पत्नी को देखा। मैं जब प्राइमरी में पढ़ता था तब मेरे पड़ोस में एक जवान लड़की ने आत्महत्या की थी। वो सुबह से गीता दत्त के गाने गुनगुना रही थी। उसने अपनी देह पर हल्दी लगाई थी, अपनी मांग भरी थी। क्या चाह रही होगी वो, जीते रहना या मर जाना? तुमने उसे मरते हुए देखा? वो अस्पताल में मरी थी, पर मैंने उसे जीने के लिए तड़पते देखा था। ये मैं आज सोचता हूँ। रेस्तरा में नाश्ता करने के बाद वो बाजार चला गया और नैना अपने घर लौटने लगी। लौटने के लिए उसने लंबा और सूना सा रास्ता चुन लिया। बारिश के बाद उस रास्ते पर चलने का अपना सुख था। नैना ने आज की हुई बातचीत से महसूस किया था कि जीवन की कुछ जगहें हैं जहां उसका अनुभव, जिन पर उसका सोचना ज़्यादा जीवित और जटिल लगता है। उन जगहों पर चलते हुए वो कुछ अधिक अजनबी, अकेला और अमूर्त हो जाता है। नैना को किसी को भी उसकी ठोस जमीन पर खड़े हुए देखना और वहाँ से उसको महसूस करना अच्छा और ज़रूरी लगता था। किसी को उसके अपने अंतर्द्वंद्वों के बीच देखने का गहरा महत्व था और उसके अपने खतरे भी थे। नैना ने जाना था कि जो कुछ आत्मीय होगा उसे पाना कठिन होगा। उसके लिए प्रयत्न भी करना पड़ेगा और प्रतीक्षा भी। नैना प्रतीक्षा कर रही थी, पर वो खुद नहीं जानती थी कि वो किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रही है। एक उम्र होती है जो सिर्फ बीतना जानती है। बिना किसी मंजिल के हम चलते रहते हैं, थक जाते हैं और दोबारा अपनी अजनबी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। नैना उस उम्र में खड़ी थी। वो अपनी नानी की देखभाल करती थी, कॉलेज में पढ़ाती और खाली समय में पुस्तकें पढ़ती रहती या रिकॉर्ड सुनती रहती। कभी नाहिद के घर चली जाती या नाहिद उसके घर आ जाती। नाहिद 32 की हो रही थी और नैना से बड़ी थी। नैना के दोस्तों में नाहिद के अलावा वो था, पर उसका अपना परिवार था, उसकी पत्नी और बच्चे, जिनसे वो कभी कभी मिली थी और हमेशा इस दुविधा के साथ मिलती कि न जाने वे लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे। वो खुद उस आदमी को एक ऐसे मित्र के रूप में देखती थी, देखना चाहती थी, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता था, समझा जा सकता था। लेकिन ये पूरा सच नहीं था। ये नैना का सोचना था, सच नहीं, सच और सोच के साथ स्वप्न भी थे। पर किसी पुरुष से ऐसी उम्मीद रखना, किसी विवाहित आदमी से ऐसा रिश्ता बनाना, ऐसे रिश्ते के साथ जीना सरल नहीं था। नैना अपनी आकांक्षाओं में भी अपनी प्रतीक्षा की ही तरह अपने आप को अकेला पाती थी। ये उसकी एक पीड़ा थी। कार्तिक की शाम थी, नैना की छुट्टियों के दिन। वो अपने कमरे में भीमसेन जोशी का राग विहाग सुन रही थी। नानी अपनी शाम की पूजा की तैयारी कर रही थी। कभी कभी ऐसी शामें आती हैं जब अपना अकेलापन असहनीय हो जाता है, अपने अनाथ होने का अवसाद अधिक हो जाता है, उम्मीद की प्रतीक्षा नहीं रहती और प्रतीक्षा का कोई अर्थ नहीं। हम निराशा की नदी में डूबते चले जाते हैं। नैना ऐसी ही शाम की निराशा के साथ थी। नाहिद को क्यों नहीं बुला लेती, नानी कह रही हैं। मैं ठीक हूँ नानी, खून बहुत जा रहा है। डॉक्टर के पास चलोगी? फ़ोन किया था, रात में एक टैबलेट लेने के लिए कहा है। पूजा होने के बाद तेरे पास आती हूँ। नैना ने नानी के ईश्वर पर असीम विश्वास पर ठहरना शुरू किया। वो बचपन से नानी की दिनचर्या में नियमित पूजा पाठ को देखती आई थी। दिन चाहे सुख के रहें या दुख के, नानी किसी तरह भी ईश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाए रखती। कथावाचकों को सुनते हुए, मानस पढ़ते हुए, मंदिर जाते हुए और घर में रोजी पूजा पाठ और प्रार्थना करते हुए नानी 70 पार कर रही थी। उन्हें विधवा हुए 30 वर्ष हो रहे थे, नानी के घर में रहते हुए 26 वर्ष। नैना को याद आई अपने पिता की बात। वे कहते थे कि आदमी का अपना एक संसार होना चाहिए, इस संसार के अलावा, इस संसार में और इससे अलग भी। वैसा संसार नानी के पास था, नैना के पास नहीं। कुछ था तो नानी का सहारा था, जिसके भरोसे नानी खुद को छोड़ सकती थी, जिसके बीच अपनी व्यथा और विडंबना को भूल सकती थी, पर नैना किसी आस्था, ऐसे किसी आश्वासन को पा नहीं सकी थी। बिना किसी आस्था, बगैर किसी आश्वासन के जीने की अपनी उदासी और उलझने थी। नानी के साथ बनारस की अपनी यात्रा, बनारस के बंदरों और अपने बचपन की याद करते हुए नैना को लगा था कि बचपन की दुनिया में उतनी दरारें नहीं होती हैं जितनी बड़े हो जाने पर हम अपने भीतर पाते हैं। खिचड़ी बनाती हूँ, नाहिद नींबू का अचार दे गई थी, नानी ने कहा है। तुम नाहिद को फ़ोन भी कर दो नानी, मैं बूथ तक नहीं जा सकूँगी, वो आज की रात यहीं रुक जाएगी। नाहिद अपने साथी तीनों के लिए खाना ले आई थी। खाने के बाद नानी अपने कमरे में चली गई और नैना और नाहिद मेज के पास ही बैठे रहे। नाहिद, क्या तुम्हें कभी सब कुछ उखड़ा उखड़ा सा नहीं महसूस होता? जीने का कोई अर्थ नज़र नहीं आता? कभी कभी तो ऐसा सभी के साथ होता होगा। मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ। सच कहूँ तो मुझे अपने बारे में ज़्यादा सोचने का समय ही नहीं मिलता। घर में सभी मुझसे छोटे हैं, उन्हें पढ़ाती हूँ, अम्मी बिस्तर पर ही रहती हैं, घर के काम, बीच बीच में दुकान की देखभाल। अब्बा के जाने के बाद मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई हैं। और तुम्हारे विवाह के बाद क्या होगा? वो बहुत दूर की बात है, मैं उतनी दूर की बात पर रुकना नहीं चाहती। नाहिद, तुम बहुत कुछ छिपाना जानती हो, तुम्हारी सहनशीलता से ईर्ष्या होती है। नैना, मैं बहुत नहीं पढ़ती, तुम्हारी तरह प्रतिभाशाली भी नहीं हूँ, लेकिन ये हमेशा सोचती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको रोका नहीं जा सकता। यदि रोकने की कोशिश करो तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, मगर हम आहत होते हैं। उस पुरानी मेज के करीब नैना और नाहिद के बीच निराशा, नियति और इनसे निजात पाने को लेकर देर तक बात होती रही। खिड़की से अक्टूबर के आकाश में खेलते तारे नजर आ जाते और नैना निराशा, नियति और नाहिद को छोड़ अपनी माँ के मरने की रात को देखने लगती। उसकी माँ की मृत्यु की रात भी सर्दियों की ही थी और नीला आकाश तारों से भरा हुआ था। निराशा के नर्क के बीच नीले आकाश की रोशनी, रौनक और रात को देखने की अपनी तसल्ली थी। नानी ने दरवाज़ा खोला और वो अपनी 5 बरस की बच्ची के साथ खड़ा था। नैना बालकनी में पौधों को पानी दे रही थी। बच्ची खिलौनों से सजी पुरानी अलमारी को गहरी उत्सुकता के साथ देखने लगी। उसने अखबार के करीब पड़ी पत्रिका उठाई। पत्रिका के कवर पर ऋत्विक घटक थे। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, उसने कहा। मिसेज रानाडे ने बताया होगा, मैं अभी नोटबुक खरीदने नाहिद की दुकान पर गया था। अब कुछ ठीक है, कल शाम को बहुत तकलीफ थी। तुम मुझे फ़ोन कर सकती थी? नाहिद आ गई थी, अभी तो मैं फ़ोन करने जा रही थी। आज गुड़िया कहाँ घूम रही है? आप हमारे घर नहीं आई आंटी, उसकी बच्ची ने कहा। तुम हमें बुलाती ही नहीं। अच्छा बताओ, तुम क्या खाओगी? कुछ नहीं, उसने पिता की ओर देखा। क्यों? अभी नाश्ता किया इसने, मैं शाम को आऊँगा, कुछ काम हो तो बता दो। मन रहा तो शाम को लाइब्रेरी चलेंगे, तुम कहीं से कल का टेलीग्राफ खरीद लेना और एक ब्रेड भी। रात के लिए खाना घर से ले आऊँगा? उसकी ज़रूरत नहीं है, लता को तकलीफ़ होगी, नानी का तो उपवास है। लता को अच्छा लगेगा, कहती भी है कि नैना हमको अपना नहीं समझती। तुम लोगों के अलावा है ही कौन मेरा? नाहिद की अम्मी बीमार है पर कल रात भर मेरे पास रही। ऐसे लोग, इतने प्यारे लोग बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं। मैं 7 बजे तक आऊँगा, बीच में ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर देना। नानी से प्रसाद लेने के बाद पिता और लड़की बाहर निकल आए। केले के पेड़ के नीचे बैठी गाय और उसके बछड़े को देख बच्ची का चेहरा खिल गया। वो करीब जाकर बछड़े को सहलाने लगी। नैना अपनी दहलीज से देख रही थी। बचपन की छोटी छोटी खुशियों, बच्ची के उत्साह और उल्लास को देख उसका अपना मन कुछ हल्का हुआ। रोज़ वहाँ बैठती गाय की देह सुंदर लगने लगी और बछड़े की आँखों में उसे अपना कोई स्वप्न तैरता नजर आया, पर उसका स्वप्न भी उसके भीतर बहुत धुंधले रूप में जीवित था। नैना के स्वप्न अस्पष्ट थे और उसकी प्रतीक्षा उसके लिए भी अजनबी थी। उस शाम वो स्कूटर से नैना को लाइब्रेरी में ले गया। रीडिंग रूम में सर्दियों के इम्तिहान की तैयारी करते छात्र छात्राएँ थे। नैना अपनी पुस्तकें निकाल रही थी और वो अखबार पढ़ रहा था। लाइब्रेरी के कोने में रविंद्रनाथ ठाकुर की बुढ़ापे की एक बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर पर उसकी निगाहें रुकीं और वो शांति निकेतन में बीते अपने दिनों में लौटने लगा। तब वो अकेला था और हर साल किसी लंबी यात्रा पर निकल जाता था। तुम्हें कभी शांति निकेतन जाना चाहिए, वो बाहर निकल कर बोला। इस जन्म में तो वहाँ जाना संभव नहीं होगा। तुम बहुत निराशा के साथ जीती हो। निराशा? लाइब्रेरी के सूने लंबे गलियारे में जैसे उसने पहली बार उस शब्द को महसूस करना शुरू किया। कितना विराट विस्तार था उस शब्द का, तीन अक्षरों की लंबी अंधेरी और सूनी सुरंग, एक बंजर और बेकार जमीन जहां उम्मीद पनप ही नहीं पाती, मन का मरुस्थल, मरुस्थल का मन। तुम क्या सोचते हो? नैना पूछ रही थी। क्या कहा? क्या उम्मीद एक तरह की निराशा ही नहीं है, मन की तसल्ली के लिए खिलौना जिससे सिर्फ बच्चे खेल सकते हैं? निराशा के लिए नहीं, उम्मीद के लिए जीना पड़ता है, उसे हासिल किया जाता है, हर आदमी उसे अपने लिए पैदा करता है। उम्मीद, उम्मीद, नैना ने बहुत धीरे से कहा और ये शब्द भी मठ की तरफ जाती सड़क पर नैना को पराया परदेशी जान पड़ा। वो सोचने लगी कि दोनों ही शब्दों के बारे में कितना कुछ कहा जा सकता है, लेकिन उसे ये भी लगा कि कुछ शब्दों के बारे में कहना सरल होता है पर उन शब्दों को जीना, उनके साथ सहज संबंध बनाना बेहद मुश्किल। नैना के भीतर ढेर सी थकान ना होती और एक किस्म की कमजोरी से वो मुक्त होती तो इन शब्दों के सहारे, इनके साथ वो अपने होने अपने जीने के विषय में उससे कुछ कहने की कोशिश जरूर करती। उस बातचीत में नैना के लिए अपने पर ठहरना, अपने को देखना और एक हद तक अपने जीने के अर्थों को पकड़ना संभव होता। लेकिन उस शाम की निराशा उसकी थकी हुई बीमार देह से ही बाहर आ रही थी। नैना के लिए पड़ोस में फ़ोन आया था। पड़ोस एक गुजराती विधवा का था। उसके घर की दीवारों पर अपनी जवानी में बनाए उसके चित्र थे। एक चित्र में तार पर टंगे कपड़े, पेड़ पर बैठी चिड़िया और वहीं आईने में अपना चेहरा देखती एक किशोरी थी। उस चित्र को देखकर हमेशा ही नैना को कुछ याद आने जैसा लगता पर वो कुछ कभी याद नहीं आता था। उस विधवा ने यह जरूर बताया था कि शायद वो गुजरात के एक छोटे से शहर की गर्मियों की दोपहर को व्यक्त करना चाह रही थी। इतने वर्षों बाद उस विधवा के लिए बचपन की उन गर्मियों की दोपहर का शायद ही कोई अर्थ रह गया था और उस चित्र का बिल्कुल भी नहीं, जिसे वो अपने ननिहाल से बहुत सी चीज़ों के साथ लाई थी। अब तुम कैसी हो? उसने पूछा। आज ठीक लग रहा है। कल शाम तुम बीमार थी, बीच बीच में बड़बड़ा भी रही थी, शायद तुम्हें बुखार रहा होगा या दवाइयों का असर था। तुम्हें कुछ दिन घर में रहना चाहिए। शाम को घर में जी नहीं लगता, नानी अपनी पूजा में लग जाती हैं, नाहिद भी नहीं आ सकती। मैं आऊँगा और शायद लता भी, वो भी तुम्हारे लिए चिंता कर रही है। मुझे क्या हुआ है? और अपने सवाल को रोशनी में उसने बाहर आकर देखना शुरू किया। वो फ़ोन पर हिदायतें दे रहा था और नैना कुछ नहीं सुन रही थी। वो देख रही थी सुबह की रोशनी में अपनी खिड़की पर खड़े होकर अपने से ही बोलती उस गुजराती बुढ़िया को, जो अपने घर में आई पड़ोस की लड़की से बेखबर गुजराती में बोल रही थी, हंस रही थी और किसी को पुकार रही थी। घर लौटते हुए नैना ने अपनी पड़ोस की विधवा की खाली प्रतीक्षारत निगाहों को याद करना शुरू किया। किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रही है वो बुढ़िया? क्या कह रही थी वो अपने आप से? क्या उसे लौटते समय कुछ कहना चाहिए था? पर फ़ोन पर वो क्या क्या बोल रहा था और वो कितना अजीब महसूस कर रही थी। नानी मानस की पंक्तियों को गुनगुना रही थी। वो बिस्तर पर लेट गई। देह के भीतर का दर्द उठने लगा। उसे माँ का सीढ़ियों पर धूप के लिए बैठना याद आया। ये भी याद आया कि माँ कभी कभी चुपचाप रोती थी। वो स्कूल से लौटकर माँ के कमरे में जाती और उसे रोते हुए देख अपने कमरे में लौट आती। उसके मन में आता कि माँ के पास रहूं, पर उसके पिता कहते थे कि कोई अकेले ही रो रहा हो तब उसे अकेले ही छोड़ देना चाहिए। माँ कभी कभी अकेले में रोती थी, नैना ने याद किया। उसका अपना कोई दुख रहा होगा, नानी ने कहा। तुमसे कुछ नहीं कहती थी? वो बहुत जल्दी निराश हो जाती थी। वो बहुत छोटी थी तब पेड़ के नीचे बैठी रहती, मैं कपड़े निकालने जाती और आवाज़ से चिड़िया उड़ जाती, तब तेरी माँ वैसी ही बैठी रहती। और शादी के बाद? नैना ने पूछा। तेरे बाबा उसे बहुत चाहते थे, उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी। तुझे देखकर उसका नहीं तेरे बाबा का ख्याल आता है। निराश वो भी रहता था पर उम्मीद भी नहीं छोड़ता था। निराशा और उम्मीद, नैना को आश्चर्य हुआ कि कल शाम की उससे हुई बातचीत के वही शब्द सुबह की घड़ी में एकदम अलग बातचीत में लौटे थे। नानी की आवाज़ में वे शब्द बहुत ही पुराने महसूस हो रहे थे, दो प्राचीन और परिचित शब्द जिन्हें कितने ही लोगों ने कहा होगा, सहा होगा। नानी अपने कमरे में अपनी उधड़ी स्वेटर को बुन रही थी। नैना छत की तरफ देखते हुए अपने अतीत को देख रही थी। वहाँ लौटना निराश होना था, वहाँ देखना जीने की उदासी में उतरना था, पर न उदासी से दूर रहा जा सकता था और न ही निराशा से अलग। ये दोनों शब्द भी पुरखों की तरह हर आदमी के साथ रहने के लिए विवश थे और इन शब्दों की अपनी व्यथा थी और अपना वैभव था, अपनी जगह थी और अपना जीवन था। अक्टूबर की सुबह के वक्त अपनी उधड़ी हुई स्वेटर को ठीक करते हुए नानी मानस की पंक्तियों को गुनगुना रही थी और नैना निरंतर छत की तरफ देखते हुए कुछ नहीं सोच रही थी। बहुत कुछ सोच रही थी। कोई उनके दरवाजे पर दस्तकें दे रहा था। नानी बाहर आई और अपने पड़ोस की गुजराती बुढ़िया को देखा। नैना के लिए नाहिद का फ़ोन था। वो नाहिद को फ़ोन पर सुन रही थी और उस बुढ़िया को देख रही थी, पर अब वो खिड़की के पास नहीं अपने आईने के करीब खड़ी हुई अपने बाल संवार रही थी, अपनी साड़ी के सलवटे हटा रही थी। नाहिद उसके यहाँ बिरयानी लेकर आ रही थी और साथ में बेगम अख्तर का वो रिकॉर्ड भी जिसे नैना बहुत दिनों से सुनना चाह रही थी। वो नाहिद की प्रतीक्षा करने लगी। नैना प्रतीक्षा कर रही थी।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।